रिसेप्शन से थके हारे सब घर लौटकर सोने की तैयारी में ही थे कि कविता की चीख पुकार सुनकर ड्राइंग रूम में इकट्ठे हो गए। पता चला कि उसके सोने के झुमके नहीं मिल रहे, जिन्हें सुबह ही राधिका को अकड़ते हुए दिखा रही थी, और बस इसी बात पर उसने पूरे घर को सर पर उठाया हुआ था। ठीक से जाकर ढूंढो, वहीं कहीं रखा होगा, माधव ने जैसे ही ये कहा कविता रोते हुए चिल्लाने लगी। कहाँ देखूं, जब हर जगह ढूंढ लिया, कहीं भी नहीं है। जरूर किसी ने चुरा लिया है, इतने खूबसूरत सोने के झुमके थे, किसी ने हाथ साफ कर लिया। कौन चुराएगा तुम्हारे झुमके? गिनती के तो रिश्तेदार आए थे, तुम्हारे कमरे में तो कोई गया ही नहीं, और पार्टी के बाद सब चले ही गए। पार्टी में जाने तक झुमके कमरे में रखे थे, किसी रिश्तेदार ने नहीं लिए हैं। तो क्या घर में से किसी ने लिए हैं? आप हम सबको चोर कह रही हैं, इस बार निशा ने नाराजगी से कहा। पहले तो कभी इस घर में ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर आज घर से मेरे सोने के झुमके गायब हो गए। कितने पसंद थे मुझे वो झुमके, सुबह ही मैंने भाभी को दिखाए भी थे, शाम को उतार कर गई और अब मिल ही नहीं रहे। कविता की बातों का इशारा किसोर था लगभग सभी समझ गए थे। राधिका हैरान थी तो वहीं माधव के चेहरे पर कठोर भाव उभर गए थे। कहना क्या चाहती हो तुम, साफ साफ कहो। माधव के सख्त चेहरे को देखकर कविता ने मासूम सी सूरत बनाई और तुनकते हुए बोली, मैं क्या कहूंगी, आप भाभी से ही पूछिए, कहीं मेरे झुमकों से जलन तो नहीं हो गई। जरूर इतने प्यारे झुमके देखकर उनकी नीयत खराब हो गई होगी और लालच में उन्होंने झुमके ही गायब कर दिए। सीधे से इल्जाम लगा था राधिका पर और वो फटी आंखों से बस उसे देखती ही रह गई, जबकि माधव का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और अगले ही पल उसके गुस्से भरी बुलंद आवाज वहां गूंज उठी, कविता जुबान संभाल कर बात करो, भूलो मत कि जिस पर तुम चोरी का बेबुनियाद इल्जाम लगा रही हो वो भाभी है तुम्हारी। मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रही, बस सच्चाई बता रही हूँ। आज से पहले तो इस घर में कभी कोई चीज गायब नहीं हुई, और भाभी के घर में कदम रखते ही मेरे सोने के झुमके चोरी हो गए, वही झुमके जो मैंने सुबह उन्हें दिखाए थे, तो शक तो जाएगा ही मेरा उन पर। कविता ढीठ बनी अपनी बात पर अड़ी रही और उसकी यही हरकत माधव के गुस्से को भड़का गई। कविता, मैंने पहले ही कहा था तुम्हें, अपनी भाभी के संग इज्जत से पेश आना, उनका सम्मान करना, पर उनके आते ही तुमने उनके खिलाफ साजिशें रचना शुरू कर दिया है। सुबह तुमने उन्हें नीचा दिखाया, उनकी इंसल्ट की, और अब उन पर चोरी का इल्जाम लगाकर सबकी नजरों में उन्हें गिराना चाहती हो। बस कर दो अपनी ये हरकतें, इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। भैया, मैं कोई साजिश नहीं रच रही भाभी के खिलाफ, कविता भी गुस्से में भुनभुनाई। माधव ने त्योरियां चढ़ाते हुए उसे घूरा और जबरी भींच लिए। तुम्हें क्या लगता है कविता, मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम किस हद तक जा सकती हो। मैं नहीं जानता कि राधिका को किस कदर नापसंद करती हो तुम, या मैं ये नहीं जानता कि राधिका क्या कर सकती है और क्या नहीं। तुम्हें पता भी है कि किस पर चोरी का इल्जाम लगाया है तुमने? ये वो लड़की है जिसने सिर्फ दोस्ती के नाम पर मुझे लाख से ऊपर रुपए दिए थे, ताकि तुम्हारे ससुराल की डिमांड पूरी करके तुम्हें तुम्हारे घर वापस भेजा जा सके। अपने पूरे परिवार को अब तक अपने दम पर चलाती आई हैं ये, और आज भी तुम्हारे उन झुमकों से कई गुना ज्यादा कीमती और महंगे गहने उनके अलमारी में पड़े हैं। अपने पैरों पर खड़ी है वो, ऐसे एक या दस झुमके खुद से बनवाने की काबिलियत रखती है, उन्हें तुम्हारे झुमके की कोई जरूरत नहीं। माधव का बढ़ता गुस्सा देखकर कविता ने अपना हथियार बदला, अब गुस्से की जगह निराश और दुखी चेहरा बनाए माधव को देखने लगी। आप इनका साथ दे रहे हैं जो चंद दिनों महीनों पहले आपकी जिंदगी में आई हैं, और मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मुझे राधिका पर खुद से ज्यादा विश्वास है, तुम क्या खुद भगवान भी आकर कहेंगे तब भी मैं इस बात पर विश्वास नहीं करूंगा। अच्छा, अगर इतना ही विश्वास है आपको अपनी एक दिन की बीवी पर, तो अभी इनके सामान की तलाशी लीजिए। अगर मेरा झुमका इनके पास नहीं मिला तो अभी इसी वक्त मैं इस घर से चली जाऊंगी। कविता का विश्वास से भरा दृढ़ लहजा देखकर माधव संशयकित निगाहों से उसे देखने लगा। तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम्हारे झुमके राधिका के ही सामान में हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें फंसाने के लिए तुमने ही वो झुमके उनके सामान में रख दिए हैं और अब यहाँ तमाशा लगा रही हो ताकि सबके सामने राधिका को बेइज्जत कर सको? तीर बिल्कुल निशाने पर लगा था, माधव ने तो बस अंदाजा लगाया था, पर कविता बुरी तरह हड़बड़ा गई। ये कैसी बात कर रहे हैं आप, मैं ऐसा क्यों करूंगी? बस कर दो कविता, इससे ज्यादा न तो मुझसे तुम्हारा झूठ बर्दाश्त होगा और न ही तुम्हारी ये घटिया हरकतें, इसलिए चुपचाप जाकर हमारे कमरे से अपना झुमका लेकर आओ, और खबरदार जो दोबारा ऐसी कोई हरकत करने की सोची भी। इस बार कुछ नहीं कह रहा, पर हर बार तुम्हारी ऐसी घटिया हरकतें माफ नहीं करूंगा मैं, और न ही बहन समझकर तुम्हारी हर गलती बर्दाश्त करूंगा, ये याद रहे। और एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, राधिका मेरी पत्नी है, उनकी इज्जत मेरी इज्जत है और उनका अपमान मेरा अपमान, तो आगे से ऐसी ओछी हरकत करने से पहले अच्छे से सोच लेना। सवाल अगर राधिका पर उठेगा तो बेइज्जत तुम्हारा भाई होगा, अगर तुम्हें वो नहीं पसंद तो दूर रहो उनसे। मैं नहीं कहता जबरदस्ती उनसे कोई रिश्ता बनाने पर जो रिश्ता जुड़ गया है उसका मान रखो। जैसी भी है अब यही तुम्हारी भाभी है, अगर इनकी इज्जत नहीं करोगी तो इस घर में तुम्हें भी इज्जत नहीं मिलेगी, अगर इनका सम्मान नहीं करोगी तो यहाँ तुम्हें सम्मान नहीं मिलेगा, और अपनी भाभी से ही नहीं बनेगी तुम्हारी तो मायका भी छूट जाएगा तुम्हारा। इसलिए आखिरी बार समझा रहा हूँ, अपनी हरकतों को काबू में रखो और राधिका को अपनी इस घटिया साजिशों से दूर रखो। माधव की गुस्से भरी तीखी आवाज पूरे घर में गूंज उठी। इस कदर नाराज उसे सबने दूसरी बार देखा था। पहली बार तब था जब सुमन के साथ रहने पर निशा पर मुसीबत आई थी, और दूसरी बार आज जब कविता ने राधिका की इंसल्ट करने की कोशिश की थी। माधव का चेहरा सख्त था, लहजा कठोर, और आंखें कविता को चेतावनी दे रही थी। चलिए राधिका, माधव ने बाकी सबको नजरअंदाज करते हुए राधिका की कलाई थामी और अपने रूम में चला गया। राधिका भी उसका ये रूप देखकर स्तब्ध थी, और जिस तरह सबके सामने उसने उसके लिए स्टैंड लिया, उसके लिए अपनी ही बहन के सामने खड़ा हो गया। राधिका के सीने में मौजूद दिल जोरों से धड़क रहा था। कविता, तुम बहनों में सबसे बड़ी हो, तो थोड़ी समझदारी दिखाओ। हम तो 4 दिन के मेहमान हैं अब, बुढ़ापा आ गया है, शरीर साथ नहीं देता। आज है कल नहीं है, हमारे जाने के बाद तुम्हारा मायका तुम्हारे भाई भाभी से ही होगा, और वही दुख सुख में तुम्हारा साथ देंगे। हमने घर भी राधिका बहू के नाम करने का फैसला कर लिया है। माँ हूँ तुम्हारी, प्यार से समझा रहे हैं, अगर अपनी भाभी से बनाकर नहीं रखोगी और ऐसे ही व्यवहार करोगी तो कल को तुम्हारा भाई भी तुमसे मुंह मोड़ लेगा। जब तक हम हैं तुम्हें यहाँ आने से नहीं रोकेंगे, पर हमारे दुनिया से जाते ही तुम्हारा मायका छूट जाएगा। इसलिए सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम तीनों को कह रहे हैं कि अपने भाई भाभी से बनाकर रखो। अनुपमा जी ने अपनी तीनों बेटियों को समझाया, फिर जी कड़ा करके कविता से आगे कहने लगी, अब से माधव तुम्हारे ससुराल की कोई मांग पूरी नहीं करेगा। उसने तुम्हारी शादी करवाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, अब अपनी गृहस्थी संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। माधव अब अकेले नहीं कि अपना सब कुछ आप सब पर लुटाते रहें। भगवान की कृपा से शादी हो गई है उनकी, कल को बच्चा होगा, परिवार बढ़ेगा, तो तुम्हारा घर देखेगा या अपने परिवार का पेट भरेगा। इसलिए अपनी गृहस्थी खुद संभालो, जितना कर दिया है उन्होंने आपके लिए वो बहुत है, अब उनसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखिएगा। शादी के बाद बेटियां मायके में मेहमान जैसी होती हैं, मन करे तो आओ, कुछ दिन आराम से यहाँ बिताओ और वापस अपने घर लौट जाओ। आप अपने भाई की शादी में आई, अब शादी हो गई है तो अपने घर जाकर अपनी घर गृहस्थी को संभालिए।
अपना फैसला सुनाकर अनुपमा जी भी वहां से चली गई। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कविता को जाने के लिए कह दिया था, उसे चेतावनी भी दे दी थी। शिखा भी मुंह बनाती हुई उनके साथ चली गई। निशा ने अफसोस से सर हिलाया और वो भी चली गई। बस गुस्से से बौखलाई कविता ही वहां रह गई थी। आई तो थी वो राधिका की इंसल्ट करने के इरादे से, पर यहां अपनी ही इज्जत का तमाशा बना लिया था। माधव और राधिका कमरे में चले आए थे। गुस्से में माधव का गोरा चेहरा लाल हो रखा था, सांसें तेज चल रही थीं, बाहें और माथे की नसें तनी हुई थी। राधिका से मुंह फेरे खड़े माधव ने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में अपने बालों को अपनी मुट्ठियों में भींज लिया और चेहरा हल्का सा ऊपर उठाए गहरी सांसें लेते हुए खुद को शांत करने लगा। उसके पीछे खड़ी राधिका मदहोशी के आलम में एकटक उसे देखे जा रही थी। अचानक ही माधव को अपनी कमर पर किसी की बाहों की कस्ती पकड़ का एहसास हुआ, और साथ ही एक जानी पहचानी सी महक उसके आसपास बिखर गई। राधिका उसकी पीठ से लग चुकी थी, पर अगले ही पल माधव अपनी कमर पर से उसकी बाहों को हटाते हुए उसकी ओर पलट गया। राधिका ने नजरें उठाकर उसे देखा। माधव के चेहरे पर दुख, पछतावा, शर्मिंदगी के मिश्रित से भाव मौजूद थे। राधिका सत, माधव ने इतना ही कहा था कि राधिका ने उसके होठों पर अपनी हथेली रख दी और इनकार में सर हिलाते हुए बोली, नहीं कुछ मत कहिए, मुझे कोई शिकायत नहीं आपसे, आपकी कोई गलती ही नहीं, फिर आप क्यों माफी मांग रहे हैं। माधव ने अपने मुंह पर से उसकी हथेली को हटा दिया और आत्मग्लानी से भरे शब्द उसके लबों से आज़ाद हुए, पर गलती मेरे परिवार की है, मेरी अपनी बहन ने आपका अपमान किया है, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है, मेरा फ़र्ज़ है उनकी गलती सुधारना। आप मेरे लिए इस घर में आई हैं, मुझ पर विश्वास करके आपने अपना घर परिवार सब छोड़कर मेरे परिवार को अपनाया है, ये मेरा कर्तव्य है कि इस घर में आपको सम्मान दिलाऊं, आपके स्वाभिमान की रक्षा करूं। आपने अपना फ़र्ज़ निभाया है, घर में सब बहुत सम्मान करते हैं मेरा, और आज आप मेरे लिए अपनी बहन के सामने चट्टान बनकर खड़े हो गए, मुझ पर उठी उंगली को खुद पर ले लिया, मुझ पर इतना विश्वास किया, मेरी बेगुनाही साबित की, मेरे आत्मसम्मान की रक्षा की, मेरा अपमान होने से रोका, सब तो किया आपने मेरे लिए, अपने मन से इस आत्मग्लानी को मिटा दीजिए, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। राधिका आगे बढ़कर उसके सीने से लग गई। माधव कुछ पल अपने ही ख्यालों में उलझा रहा, फिर उसने भी राधिका को अपनी बाहों में भर लिया। कमिंग सून। कविता की इस हरकत और माधव के रिएक्शन पर आप क्या कहना चाहेंगे?